नमस्कार साथियों, मैं अपना श्रीवास्तव बहराइच मोबाइल वाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इतिहास के कुछ पन्नों की तरफ ले चलूंगी, जिसमें मैं कश्मीर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। स्वाधीनता के बाद भी अंग्रेजों की चालबाजियों का शिकार होता रहा भारत। यहाँ अपने ही लड़ जाते हैं, जिनकी इच्छा थी कि कभी स्थिर न हो पाए यह देश, यानी कभी रुक न पाए। उन्होंने न केवल जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों को उकसाया, बल्कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने के लिए भी कामयाबी रची। हमले का कुटिल और कल्पना से परे षड्यंत्र इसके बाद भी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत में। फिर हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। फिर भारत की प्राधीनता की बेड़ियां टूट चुकी थी, मगर यह विभाजित देश अब भी कई जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश स्वाधीन अवश्य था, परंतु प्रशासन और सुरक्षा के विभिन्न और वास्तविक स्तरों पर अभी अंग्रेज जमे हुए थे। उनकी नीति भी वही थी, फूट डालो और राज करो। हाँ, यह परिवर्तन अवश्य हुआ था कि अब एक कदम आगे बढ़कर घर फूंक तमाशा वाली हो गई थी। स्वाधीनता उपरांत विभिन्न रजवाड़ों और रियासतों में यहाँ खुशी खुशी भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। वहीं कुछ अब भी असमंजस अथवा हठधर्मिता में अटके हुए थे। आज से ठीक 76 वर्ष पहले अक्टूबर का यही महीना था, जब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत में विलय के मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाकर उलझे हुए थे। मामला काफी पेचीदा होता जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन को आश्वासित किया कि विलय के बाद इन रियासतों की सुरक्षा, संचार और विदेशी मामले भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। परंतु माउंटबेटन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के लिए विलय पर विचार के लिए लंबा समय दे दिया। लंदन में डेरा डाले जूनागढ़ के नवाब से भारत वापस लौटने तक के लिए नहीं कहा गया, और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से बार बार कहा कि अगर वे पाकिस्तान में विलय को तैयार हो जाते हैं तो माउंटबेटन के नियंत्रण वाली भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब माहौल ऐसा था तो उथल पुथल होनी थी ही। जूनागढ़ राज्य के पाकिस्तान में शामिल होने का मन तो बना लिया था। नवाब उधर विलय करना चाह रहे थे, मगर जूनागढ़ के दो हिस्सों मंगरोल और बाबरियावाड़ ने भारत के साथ रहने की इच्छा जताई और स्वयं को जूनागढ़ से अलग घोषित कर दिया। इस पर जूनागढ़ की नवाबी सेना ने दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। इस खून खराबे को देखते हुए सरदार पटेल ने यहां सशस्त्र हस्तक्षेप करना चाहा, परंतु लॉर्ड माउंटेन और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अनुमति नहीं दी। माउंटबेटन को इसकी विविध स्थिति की जानकारी देने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 सप्ताह लग गए। इसके बाद ही मंगरोल और बाबरियावाड़ा को बचाने का उपक्रम शुरू हुआ, मगर अब तक जूनागढ़ को इतना वक्त मिल चुका था कि भारतीय बलों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। सरदार पटेल के अत्यंत जूनागढ़ में जनता की अस्थायी सरकार स्थापित की, जिसका मुख्यालय राजकोट को बनाया गया। माउंटबेटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री विलायत अली और पंडित नेहरू के बीच बैठक करवाई और फैसला यह बना कि विवादियों क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। अभी इस पर अमल से पहले विचार विमर्श चल ही रही थी कि बड़ी खबर आई। पाकिस्तान के NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है की तरफ से तथाकथित कामयाबी हमलावरों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की और 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर के निकट पहुंच गए। यह कई चाल देखकर हैदराबाद के निजाम, जिनका प्रतिनिधिमंडल विलय पर बातचीत और हस्तक्षेप के लिए दिल्ली जाने वाला था, वे पांव खींच लिए और कहा कि हमें कुछ अधिक समय दीजिए। इस प्रकार 1947 में अक्टूबर के महीने ने ब्रिटिश जालसाजिशों और चालबाजियों का यह दृश्य देखा, जिसमें 3 रियासत राज उलझे हुए थे और अंग्रेज जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने अथवा उसमें कामयाब न होने पर इसके टुकड़े कर देने पर आमादा थे। मगर अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? इस सवाल का जवाब उपमहाद्वीप को हिला देने वाला है। वास्तव में पाकिस्तान की असली कायद ये आजम अंग्रेज ही थे, जिसकी डोर किसी कठपुतली की तरह HMG अथवा ब्रिटेन के हाथों में थी। उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ के महादेश रूस के पेंच इसकसे रखने के लिए नॉर्थ वेस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को अपना सैन्य अड्डा बनाया रखा था। पाकिस्तान की लकीरें दरअसल भू राजनीतिक हितों के नक्शे और खींची गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के गठजोड़ को कराची से गिलगित बलूचिस्तान और बलूचिस्तान तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र अपने नियंत्रण में चाहिए था। दंगों की राजनीति के दांव पेंच आजमाने के बावजूद जिन्ना का रंग तो इतना फीका था कि वे पाकिस्तान बनवा ही नहीं सकते थे। याद करें 1946 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार बनाने में बुरी तरह असफल रही थी। वहीं सिंध में इसकी सरकार मुंह के बल गिरी थी। खैर, जिन्ना ने सही, HMG ने पाकिस्तान बनवा दिया। 1947 में ब्रिटिश नियंत्रण वाली पाकिस्तान की सेना के सौजन्य के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लोगों ने सिर पर बंदूकें तानकर एक जनमत संग्रह हुआ कि बोलो तुम हमारे साथ जाओगे या भारत के। खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी इसका पहले ही बायकॉट कर चुकी थी और बड़ी मुश्किल से हां में 50.9% मत मिले थे। इसके बावजूद भी HMG का काम बनना नहीं था और कारण यह था कि गिलगित बलूचिस्तान तो जम्मू कश्मीर का भाग थे। यह वह रणनीति जगह थी जो चीन, रूस और अफगानिस्तान का दरवाजा खोलती थी। ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह से शामिल करना ही था जो तथाकथित कयावली हमलों की रंगभूमि तैयार की गई थी। उन्हें ब्रिटिश नियंत्रण वाली सेना से प्रशिक्षित किया और ट्रंकों तथा सैन्य वाहनों के जरिए जम्मू कश्मीर की तरफ भेजा गया। यह कितना विचित्र लगता है कि एक तरफ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड माउंटेन में मंसूलों पर सीधे चोट की थी, जो डिजाइन विभाजन के बाद दोनों देशों में यह पद संभालने वाले थे, और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर कांग्रेस ने माउंटबेटन को खुशी खुशी केवल भारत के लिए गवर्नर जनरल स्वीकार कर लिया। मजहब के आधार पर सेना भी बट गई और भारत को हो या पाकिस्तान, दोनों को इसके लिए मिले ब्रिटिश जनरल, दोनों के ही सुप्रीम कमांडर एक थे, फील्ड मार्शल सर क्लाउड जॉन आफर ऑचिकनेल। जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ हुई तब भारतीय मंत्रिमंडल में एक सुरक्षा उपसमिति गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष के लॉर्ड माउंटेन इस तरह से इधर हो या उधर जम्मू कश्मीर का पूरा मसला वास्तव में तो अंग्रेजों के हाथों में उलझा हुआ था। धन्यवाद साथियों।